एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आप सबका।
हम यहाँ कोशिश करते हैं कि जो मुश्किल आइडियाज हैं उन्हें थोड़ा आसान और दिलचस्प बनाया जाए।
और आज का विषय तो वाकई काफी सोचने वाला है, विश्वास यानी बिलीफ।
हाँ, और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे नील्स जे निल्सन की किताब अंडरस्टैंडिंग बिलीफ्स के जरिए।
ये किताब विश्वास को एक बिल्कुल ही अलग कंप्यूटेशनल नजरिए से देखती है।
और ये आज के समय में बहुत जरूरी भी है ना?
बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है
और दूसरी तरफ ये गलत सूचना मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा जाल फैला हुआ है।
सही कहा। तो ऐसे में ये समझना कि भाई हमारा ये विश्वास सिस्टम काम कैसे करता है।
हाँ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम हो जाता है।
और निल्सन की किताब इसी विश्वास जैसी चीज को तर्क और गणित के चश्मे से देखती है,
जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है
ना?
हाँ, अजीब,
और इसीलिए शायद ज्यादा दिलचस्प।
तो इस नजरिए को समझने के लिए जरा लेखक के बारे में बात करते हैं, निल्स जे निल्सन।
हाँ, वो कोई दार्शनिक या साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो तो एआई के फील्ड के आप कह सकती हैं दिग्गज थे। इंजीनियर, तर्कशास्त्री,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और एआई की नींव रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है।
जैसे वो ए सच एल्गोरिथम,
हाँ, जो आज भी मतलब गूगल मैप्स जैसी चीजों में रास्ता ढूंढने में काम आता है,
या फिर वो शेकी द रोबोट प्रोजेक्ट, दुनिया के पहले मोबाइल इंटेलिजेंट रोबोट्स में से एक था वो।
तो उनका पूरा करियर ही आप कह सकते हैं मशीनों को सोचना सिखाने में बीता।
और यही बात उनके नजरिए को खास बनाती है। वो इस बहस में नहीं पड़ते कि विश्वास की रूहानी प्रकृति क्या है या मन में ये कैसे महसूस होता है।
उनका फोकस इस पर था कि विश्वास काम कैसे करता है।
एग्जैक्टली। एक इंटेलिजेंट एजेंट, चाहे वो इंसान हो या मशीन, दुनिया को समझने और उसमें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्वास का इस्तेमाल कैसे करता है।
तो वो एक तरह से विश्वास की इंजीनियरिंग परिभाषा ढूंढ रहे थे।
हाँ, एक फंक्शनल ऑपरेशनल परिभाषा।
तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिलीफ्स, इसका मकसद क्या है?
इसका मकसद है विश्वास के आसपास जो एक रहस्य सा बना हुआ है ना, उसे हटाकर एक साफ तर्क वाला कंप्यूटेशनल मॉडल देना।
ये किताब कहती है कि विश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है।
हाँ, मतलब सूचना का प्रबंधन। किताब का जो मूल आइडिया है वो ये है कि विश्वास दुनिया की हालत के बारे में हमारे मन में बने प्रस्ताव है।
प्रस्ताव, प्रोपोजिशंस।
हाँ, प्रोपोजिशंस, यानी ऐसे कथन जो या तो सच हो सकते हैं या गलत। जैसे आज धूप निकली है।
अच्छा।
और हम यानी एजेंट इन प्रस्तावों पर पूरी तरह यकीन या शक नहीं करते, बल्कि निश्चितता की एक डिग्री रखते हैं।
डिग्री मतलब कितना यकीन है।
हाँ, कितना यकीन है। इसे नील्सन व्यक्तिपरक संभावना या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि या तो 100% यकीन है या 0%, बल्कि बीच में कहीं।
बिल्कुल। जैसे मुझे लगता है 80% चांस है कि आज बारिश होगी।
तो ये किताब हमें इसी सफर पर ले जाती है, कैसे हम जानकारी लेते हैं, कैसे अपने यकीन को घटाते हैं, बढ़ाते हैं,
और फिर कैसे इन यकीनों का इस्तेमाल करके फैसले लेते हैं।
ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये किताब इस बारे में नहीं है कि लोग क्या मानते हैं।
सही कहा।
किसी भगवान में, किसी नेता में या किसी घरेलू नुस्खे में, ये उसकी बात नहीं करती।
ये इस बारे में है कि ये मानने का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये विश्वास हमारे दिमाग में बनते कैसे हैं, बदलते कैसे हैं, और इनका आखिर मकसद क्या है।
चलिए कुछ मुख्य आइडियाज को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत होती है एजेंट और प्रस्ताव से।
एजेंट मतलब कोई भी इकाई जो अपने माहौल को समझकर उस पर एक्ट करती है।
हाँ, इंसान, जानवर, रोबोट, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर एजेंट भी। और समझदारी से काम करने के लिए एजेंट को दुनिया का एक अंदरूनी नक्शा चाहिए होता है,
और वही इसका विश्वास सिस्टम है।
ठीक है। और प्रस्ताव यानी प्रोपोजिशन।
प्रोपोजिशन है दुनिया के बारे में कोई बयान जो या तो सच है या झूठ, ऑब्जेक्टिवली, जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
तो बाहरी दुनिया में प्रस्ताव सच या झूठ होते हैं,
और एजेंट के मन की अंदरूनी दुनिया में उन प्रस्तावों के बारे में विश्वास होते हैं जो शायद पक्के न हो।
ठीक है। तो शुरू में नील्सन बताते हैं कि इन विश्वासों को दिखाने का एक तरीका लॉजिक है, तर्क।
हाँ, जैसे स्कूल में पढ़ते थे पी और क्यू सिंबल और एंड और नॉट जैसे ऑपरेटर्स।
तो एजेंट के पास एक बिलीफ बेस हो सकता है मतलब उन बातों की लिस्ट जिन्हें वो सच मानता है।
हाँ, जैसे अगर एजेंट मानता है कि पी इज इक्वल टू अगर बादल घिरे हैं, और ये भी मानता है कि पी टू क्यू इक्वल टू अगर बादल घिरे हैं तो बारिश हो सकती है,
तो वो क्यू इक्वल टू बारिश हो सकती है का अंदाजा लगा सकता है।
ये ठीक है, पर इसमें एक बड़ी दिक्कत है।
क्या दिक्कत है?
दिक्कत ये है कि ये सिस्टम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो कोई बात 100% सच है या 100% झूठ।
लेकिन असल दुनिया तो ऐसी नहीं होती, हमें तो अक्सर शक होता है, हम अनिश्चित होते हैं।
एग्जैक्टली, यहीं पर किताब का सबसे जरूरी मोड़ आता है।
क्या है वो मोड़?
निल्सन कहते हैं कि ये बाइनरी मॉडल, मतलब हाँ या ना वाला मॉडल, काफी नहीं है। हमें चाहिए विश्वास की डिग्री, डिग्रीज ऑफ बिलीफ।
अच्छा,
किसी बात पर हमारा यकीन एक नंबर होना चाहिए, 0 से 1 के बीच। इसे ही वो व्यक्तिपरक संभावना कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी।
जैसे पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.7 का मतलब है मुझे 70% यकीन है कि बात ए सच है।
बिल्कुल, ये सोच बहुत पावरफुल है। ये हमें अनिश्चितता, शक और बारीकियों को समझने का एक तरीका देती है।
अब हम कह सकते हैं शायद बारिश हो, या मुझे पक्का नहीं पता पर लगता है वो आएगा।
और ये सब गणित के संभाव्यता सिद्धांत, मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के नियमों से बंधा होता है,
ताकि हमारे विश्वासों में एक तरह की कोहेरेंस, मतलब एक अंदरूनी तालमेल बना रहे।
हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे विश्वास अकेले अकेले तो होते नहीं हैं।
सही बात है,
वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक नेटवर्क की तरह।
बिल्कुल,
जैसे मेरा ये मानना कि धुआं उठ रहा है इस विश्वास से जुड़ा है कि शायद कहीं आग लगी होगी।
इसे दिखाने के लिए निल्सन बिलीफ नेटवर्क्स की बात करते हैं, बिलीफ नेटवर्क्स।
हाँ, और खास तौर पर बेयजियन नेटवर्क्स।
बेयजियन नेटवर्क्स,
ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है।
है, पर इसका आइडिया सिंपल है। ये एक तरह का नक्शा है, इसमें गोले नोड्स हमारे विश्वासों को दिखाते हैं, जैसे बारिश हुई घास गीली है,
और तीर दिखाते हैं कि कौन सा विश्वास किस दूसरे विश्वास पर असर डालता है।
हाँ, जैसे बारिश हुई से घास गीली है तक एक तीर ये दिखाता है कि घास के गीले होने का यकीन बारिश होने के यकीन पर निर्भर करता है।
अच्छा, इन नेटवर्क्स का फायदा क्या है?
सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दिखाते हैं कि कोई भी विश्वास अकेला नहीं होता, सब जुड़े हुए हैं। और ये हमें नए सबूत मिलने पर अपने पूरे विश्वास नेटवर्क को अपडेट करने का एक एफिशिएंट तरीका देते हैं।
जैसे?
जैसे अगर आप देखते हैं कि घास गीली है, तो ये नेटवर्क आपको हिसाब लगाने में मदद करता है कि क्या बारिश हुई थी, इस विश्वास को कितना पक्का करना है।
अच्छा, और इसी जुड़ाव की वजह से शायद वो कन्फर्मेशन बायस होता है।
हाँ बिल्कुल, हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं या उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे मौजूदा नेटवर्क में फिट बैठती है।
ये बात तो है। अच्छा, तो ये विश्वास बनते कैसे हैं और बदलते कैसे हैं?
निल्सन 2 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला तो हमारी इंद्रियां हैं, परसेप्शन, देखना, सुनना, महसूस करना।
लेकिन हमारी आंखें या कान परफेक्ट तो होते नहीं हैं।
बिल्कुल, जैसे धुंध में कुछ हिलता हुआ दिखा तो हम 100% नहीं कह सकते कि वो क्या है, बस उस चीज के होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है।
और दूसरा तरीका?
दूसरा तरीका है संचार, कम्युनिकेशन, मतलब दूसरों से जानकारी मिलना।
और यहाँ ये बात जरूर मायने रखती है कि जानकारी देने वाला कितना भरोसेमंद है।
हाँ, डॉक्टर के बात पे हम ज्यादा यकीन करते, किसी अनजान व्हाट्सएप मैसेज पर कम, या कम से कम करना तो चाहिए।
सही बात है। अच्छा, और जब नई जानकारी पुराने विश्वास से टकराए तो क्या होता है?
यहीं पर आता है बेयजियन अनुमान, बेयजियन इन्फरेंस, या बेस का नियम, बेसिस रूल।
ये क्या है?
ये एक गणितीय तरीका है। ये बताता है कि नए सबूत के आधार पर अपने पुराने यकीन, जिसे प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, को नए यकीन यानी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में कैसे बदलें।
ये एक तरह से तर्कसंगत तरीके से सीखने का, रैशनल लर्निंग का इंजन है।
एग्जैक्टली, सोचिए डॉक्टर को लगता है कि मरीज को 60% चांस है कि बीमारी एक्स है। ये हुआ प्रायर बिलीफ।
ठीक है,
फिर एक टेस्ट रिपोर्ट आती है। ये हुआ नया सबूत। बेज का नियम बताएगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर अब बीमारी एक्स होने का चांस कितना हो गया है। ये हुआ पोस्टीरियर बिलीफ। यही है तर्कसंगत अपडेट।
और निल्सन ये भी कहते हैं कि जब कोई नई बात पुराने विश्वासों से एकदम उलट हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने विश्वासों में कम से कम बदलाव करें,
मिनिमल चेंज।
हाँ, ताकि वो नया तथ्य बस फिट हो जाए, पूरा सिस्टम ना हिल जाए।
अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब विश्वासों का, इस पूरे सिस्टम का आखिर मतलब क्या है,
इनका उद्देश्य क्या है?
मिल्सन कहते हैं विश्वास अकेले कुछ नहीं करते, वो तो बस जानकारी हैं।
तो वो काम कब आते हैं?
वो तब काम आते हैं जब वो हमारी इच्छाएं, डिजायर्स या लक्ष्यों, गोल्स से जुड़ते हैं।
इच्छाएं?
हाँ, इसे औपचारिक रूप से उपयोगिता, यूटिलिटी कहते हैं। मतलब कोई नतीजा हमारे लिए कितना अच्छा या बुरा है, उसकी एक वैल्यू।
और यहीं पर निर्णय सिद्धांत, डिसीजन थ्योरी और वो MEU वाला सिद्धांत आता है।
हाँ, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, MEU। सुनने में भले ही जटिल लगे, पर इसका मतलब सिंपल है। क्या मतलब है?
एक समझदार फैसला लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी मान्यताओं, बिलीफ्स, किसी चीज के होने की कितनी संभावना है को अपनी इच्छाओं, डिजायर्स, यूटिलिटीज, वो नतीजा हमें कितना पसंद या नापसंद है,
और फिर वो काम चुनते हैं जिससे सबसे अच्छे नतीजे की उम्मीद हो।
बिल्कुल, वो छाता ले जाने वाला उदाहरण याद है?
हाँ हाँ।
फैसला इस पर निर्भर करता है, बारिश की संभावना कितनी है, ये आपका विश्वास है,
और भीगना कितना बुरा लगेगा,
ये आपकी उपयोगिता या इच्छा है,
बनाम छाता ढोने की झंझट कितनी है, ये भी उपयोगिता है, नेगेटिव।
तो MEU सिद्धांत कहता है कि हम अनजाने में ही सही इन संभावनाओं और इच्छाओं का गुणा भाग करके वो फैसला लेते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदे की उम्मीद हो,
और यही विश्वास का असली फंक्शनल रोल है, हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करना।
किताब में शायद समूह विश्वास पर भी कुछ बात है। हाँ, थोड़ी बात है, जैसे कॉमन नॉलेज की, कोई ऐसी बात जो ग्रुप में सबको पता है और सबको पता है कि सबको पता है, वगैरह वगैरह,
तालमेल के लिए जरूरी होती है।
हाँ, लेकिन ये अपने आप में एक और जटिल विषय है।
तो इस पूरी चर्चा से क्या कुछ खास बातें हैं जो निकल कर आती हैं, की थीम्स?
पहली तो ये कि विश्वास को एक रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक तरह के कंप्यूटेशन, एक सूचना प्रसंस्करण की तरह देखा जा सकता है।
ये AI बनाने में तो मदद करता ही है, शायद हमें अपनी सोच को भी बेहतर समझने में मदद करें।
दूसरी अहम बात, अनिश्चितता, सर्टेंटी, सच झूठ की जो बाइनरी सोच है, उसे छोड़कर संभावनाओं में सोचना शायद ज्यादा हकीकत के करीब है।
हमारे ज्यादातर विश्वास पक्के नहीं होते, कच्चे होते हैं, और ये मानना ठीक है।
हाँ, ये हमें बौद्धिक रूप से विनम्र बनाता है, इंटेलेक्चुअली हम्बल।
तीसरी बात, वो तर्कसंगतता वाली,
रैशनल होने का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब है अपने विश्वासों को सबूतों के आधार पर सुसंगत रखना, कोहेरेंट रखना, और बेस के नियम के अनुसार अपडेट करते रहना।
गलती करना ठीक है, पर गलती से सीखना और अपने विश्वासों को सुधारना, यह है तर्कसंगतता।
चौथी बात कि विश्वास अकेले नहीं होते, वो जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क में।
ये समझना जरूरी है, खासकर जब हम किसी के गहरे विश्वासों को बदलने की कोशिश करते हैं।
हाँ, सीधे जड़ पर हमला करने से शायद डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए। हो सकता है आसपास के जुड़े हुए कमजोर विश्वासों पर बात करना ज्यादा असरदार हो।
और ये कंफर्मेशन बायस को भी समझाता है, हम क्यों उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हम पहले से मानते हैं।
और पांचवा कि विश्वास का मकसद है हमारी क्रियाओं का, हमारे एक्शन का मार्गदर्शन करना।
विश्वास दिमाग में सजाकर रखने की चीज नहीं है, वो औजार हैं, टूल्स हैं, जो हमें दुनिया में अपने लक्ष्य पाने में मदद करते हैं।
हाँ, एक अच्छा विश्वास शायद वो है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए, न कि सिर्फ वो जो सच हो।
किताब के कुछ मुख्य विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ कोट्स जैसे।
हाँ, जैसे ये कि किसी एजेंट का किसी प्रस्ताव में विश्वास, बाइनरी हाँ या नहीं नहीं, बल्कि विश्वास की एक डिग्री होनी चाहिए जिसे व्यक्तिपरक संभावना द्वारा सबसे अच्छा दर्शाया जाता है।
मतलब अपनी सोच को हाना के खांचे से निकालकर कितना प्रतिशत यकीन है के पैमाने पर लाने की जरूरत है।
बिल्कुल, और ये कि एक तर्कसंगत एजेंट नए सबूतों के सामने बेजियन अनुमान के नियमों के अनुसार अपने विश्वासों को अपडेट करता है।
मतलब सीखना और बदलना सबूतों पर आधारित होना चाहिए, न कि अपनी पसंद या भावनाओं पर। कितना मुश्किल होता है असल में करना।
हाँ, होता तो है, और फिर ये विश्वास के उद्देश्य को साफ करता है। विश्वास का उद्देश्य क्रिया को सूचित करना है। तर्कसंगत एजेंट अपने विश्वासों, संभावनाओं को अपनी इच्छाओं, उपयोगिताओं के साथ जोड़कर अधिकतम अपेक्षित उपयोगिता वाली क्रिया चुनता है।
मतलब साफ है, हम जो मानते हैं और जो चाहते हैं वही मिलकर तय करता है कि हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग का बेसिस।
तो इन सब बातों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा हो सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो अपनी सोच, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है।
कैसे?
अगर हम समझें कि हमारे विश्वास पक्के पत्थर नहीं है, बल्कि रेत के ढेर जैसे हैं जो हवा यानी सबूत के साथ बदल सकते हैं,
तो हम नई जानकारी के लिए ज्यादा खुले रहेंगे।
हाँ, और हम ये पहचान पाएंगे कि कब हम 99% यकीन कर रहे हैं जबकि सबूत शायद सिर्फ 60% का ही हो।
सही बात है।
दूसरा, ये गलत सूचना मिस इन्फॉर्मेशन को समझने में मदद करता है।
फेक न्यूज क्यों फैलती है?
क्योंकि वो अक्सर हमारे मौजूदा विश्वासों के नेटवर्क में आसानी से फिट हो जाती है
या फिर हमारी भावनाओं को अपील करती है।
ये इको चेम्बर्स को भी समझाता है। हम उन्ही लोगों या स्रोतों को सुनते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं।
शायद ये समझकर हम दूसरों के नजरिए को थोड़ा और सहानुभूति से देख पाए।
बिल्कुल। तीसरा, रोजमर्रा के फैसलों में, चाहे डॉक्टर बीमारी का पता लगा रहा हो, लक्षण, टेस्ट के नतीजे, इलाज का जोखिम, फायदा,
या हम ये तय कर रहे हों कि नई नौकरी लें या नहीं, संभावना की संभावना, सैलरी, संतुष्टि,
हम अनजाने में इसी तरह की गणना कर रहे होते हैं। इसे जानबूझकर करने से शायद बेहतर फैसले लिए जा सकें।
और हाँ, ये एआई के विकास की तो नींव है ही।
सेल्फ ड्राइविंग कार को कैसे पता चले कि सामने इंसान है या पेड़? उसे संभावनाओं पर ही काम करना पड़ता है।
और दूसरों से बहस करते समय भी, अगर हम समझें कि उनके विश्वास एक जटिल नेटवर्क का हिस्सा है तो शायद बहस लड़ाई बनने से बच जाए।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या रहा आपके लिए?
मेरे लिए शायद ये है कि विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि लगातार बदलने वाली संभावनाएं हैं। दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बल्कि ग्रे के कई शेड्स में देखना ज्यादा सही है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि तर्कसंगत होना एक मंजिल नहीं, एक सफर है। ये हमेशा सही होने के बारे में नहीं है।
हाँ, बल्कि अपने विश्वासों को सबूतों के हिसाब से लगातार सुधारते रहने और उनका इस्तेमाल अपने लक्ष्य पाने के लिए करने के बारे में है।
ये हमें अपनी सोच का ड्राइवर बनाता है, न कि सिर्फ पैसेंजर। पर एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है।
क्या सवाल?
अगर विश्वास सिर्फ कंप्यूटेशन है, संभावनाओं और उपयोगिताओं का खेल, तो क्या एआई कभी सच में विश्वास कर पाएगी जैसा हम इंसान करते हैं, या वो हमेशा एक बहुत होशियार नकल ही रहेगी?
ये तो सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।